सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं लोयालोयपयासं नूरमथेरं पुणोजिणं वीरं नमीऊणखेतसुत्तं जहो वये संपयासेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो चौथी पुस्तक है क्षेत्रानुगम, इसमें हम 95 पृष्ठ पर आए, 95। यह हम अलग अलग जीवों की अवगाहना कितनी कितनी है उसकी बात चल रही है। सबसे जघन्य अवगाहना से हमने शुरू किया था, पहले सूक्ष्म जीवों के अपर्याप्तों की जघन्य अवस्था अवगाहना, उसमें पहला नंबर निगोद का, फिर वायु का एक, फिर तेज का एक, फिर जल का एक और फिर पृथ्वी का एक। एक से दूसरे जो है वो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा है, और यहाँ असंख्यात का प्रमाण आवली का असंख्यात भाग है। उसके बाद हमने देखा था 6 नंबर से आगे, 6 से 11 तक, ये बादर जीवों की अपर्याप्तों की जघन्य अवगाहना थी। और फिर 17 से 21 तक, उसमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक से लिया और फिर द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय की अपर्याप्तों की जघन्य अवगाहना यहाँ तक हमने ली थी। अब उसके आगे हम देखेंगे, यहाँ 17 नंबर को फिर दोबारा देखते हैं। ये 16 तक हमने देखा, 12 से 16, अब 17 से 21 देखेंगे। अब यहाँ जो हम देखेंगे, यहाँ देखने वाले हैं, वो एक ही जीव के तीन तीन लेंगे, सूक्ष्म की पर्याप्त की जघन्य, सूक्ष्म की अपर्याप्त की उत्कृष्ट और सूक्ष्म की पर्याप्त की उत्कृष्ट। 17, 18, 19 ये पहले नंबर पर, फिर निगोद, दूसरे नंबर पर वायु का एक, तीसरे नंबर पर तेजो का एक, चौथे नंबर पर जल का एक और 5वें नंबर पर पृथ्वी का एक, यानी 17, 18, 19 अभी हमने देखा ना, फिर 20, 21, 22 इस तरह से अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो आपको भी ख्याल में आ जाएगा। तो 17 से पढ़ेंगे। हाँ, पहले हमने गोमर सार में देखे थे, अर्थ संदृष्टि में भी देखेंगे। हाँ, इस पुस्तक में तो पहली बार आए हैं 64 भेद, जो अवगाहना के जो 64 भेद है, एक धवला में तो पहली बार आए। तो यह हम 17 नंबर देखते हैं। सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है, यानी 16 नंबर से असंख्यात गुणी। अब 18 और 19 है वो विशेष अधिक में आएंगे। इससे सूक्ष्म निगोद निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, यानी लब्धि अपर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त दोनों को लेंगे तो उसमें से निवृत्ति अपर्याप्त की अधिक है, इस तरह से उसको ले सकते हैं। ये 18 नंबर हो गया ना। अब इससे सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना। अब 20, 21 और 22 ये तीन का ग्रुप हम देंगे, वायु काय का गुण, तो उसमें भी 20 नंबर पड़ते हैं। सूक्ष्म वायु काय निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है, यानी पर्याप्त सूक्ष्म की पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। इससे भी सूक्ष्म की अपर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना बड़ी होगी, ख्याल है ना, यानी पर्याप्त ही बड़े होते हैं, अपर्याप्त छोटे होते, ऐसा नहीं है, अवगाहना उसकी वेरिएबल है। तो ये 20 नंबर हो गया। इससे 21 नंबर पर सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, और इससे सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ये 20, 21, 22 वायु का एक संबंधी हो गए। अब किसके नंबर होगा? तेजो का एक का।
अभी देख लिए ना कि 20 में निवृत्ति अपर्याप्त है, वो तो पर्याप्त जीव ही है ना, जो
अपर्याप्त अवस्था लेना उसकी।
अपर्याप्त अवस्था लेनी है।
अब 23
जो 21 में जो लिया है वो तो अपर्याप्त नहीं, वो तो जब भी अपर्याप्त लेने का। अब तीसरे में जो पर्याप्त लेने का,
देखो अभी तीन तीन हम हर एक की बात देख रहे हैं। पहले में सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट, और फिर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट। हमने पहले तीन टेबल देखे थे तब सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य देखी थी। अब 17 नंबर से जो देख रहे हैं सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य देख रहे हैं। तीन तीन का ग्रुप है, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट और सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट। अब अपर्याप्त में दोनों ही भेद हो सकते हैं, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, इसलिए उसमें से जो बड़ी अवगाहना होगी वो उसको बताएंगे ना, इसलिए वहाँ निवृत्ति शब्द डाला उन्होंने बीच में। अब 23, 24 और 25 ये तेजस का एक की बात करेंगे। सूक्ष्म तेजस का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। किससे किस में असंख्यात गुणा किया? वायु कायिक से तेजो कायिक। वायु कायिक की जो उत्कृष्ट है, ख्याल में, वायु कायिकों के पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना से सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्तों के जो जघन्य अवगाहना है तेजो कायिकों की, तेजो कायिकों की, वो असंख्यात गुणी है। अब ये तीन तीन ग्रुप ऐसे ही चले गए आगे। तो 23 नंबर में फिर पढ़ती हूँ, नंबर डालो ना आप, नंबर डालते चलिए तो सबका एक नंबर होगा तो ख्याल में आएगा। सूक्ष्म तेजस का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। इससे 24 नंबर पर सूक्ष्म तेजस का एक अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, और 25 नंबर पर इससे सूक्ष्म तेजस का एक पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। पहला नंबर निगोद का हुआ, दूसरा नंबर वायु कायिक का हुआ, तीसरा नंबर अभी तेजस कायिक का हुआ, अभी जल कायिक यानी जिसको अपकायिक कहते हैं, उसमें भी अभी 26, 27 और 28 तीन बार हम कहेंगे उसको, तो विशेष अधिक विशेष अधिक कहेंगे। पहला जो नंबर है 26वां और 25वां कौन सा था? तेजस कायिक का था, तो तेजस कायिक से आगे जल कायिक की जो जघन्य अवगाहना है वो असंख्यात गुणी कहेंगे। तेजस कायिक की जो उत्कृष्ट अवगाहना है उससे जल कायिक की पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। यानी हमें इतना तो एहसास होता ना कौन सी अवगाहना कितनी बड़ी है। 26 नंबर, इससे सूक्ष्म अपकायिक निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। अब 27 नंबर पर, इससे सूक्ष्म अपकायिक निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, और इससे सूक्ष्म अपकायिक निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ये जल कायिक के तीन हो गए। अब पृथ्वी कायिकों के लेंगे 29, 30 और 31। 29 नंबर पर सूक्ष्म पृथ्वी कायिक निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है, क्योंकि वो पहले से कंपेयर करनी थी, जल कायिक से पृथ्वी कायिक वो असंख्यात गुणी है, परंतु पृथ्वी कायिक से पृथ्वी कायिक वाले की वो विशेष अधिक। इससे सूक्ष्म पृथ्वी कायिक निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, वो 30 नंबर हो गया। अब 31 नंबर है, इससे सूक्ष्म पृथ्वी कायिक निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। अब ये तो सूक्ष्म जीवों की बातें हो गई, जो हमने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर लिए थे वैसे ही तीन तीन बार लिए सबको। अब यहाँ से बादर जीवों की बात चलेगी, तो 32 नंबर पर बादर वायु का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। अब बादर में भी ऐसे तीन तीन का ग्रुप करना, फिर बादर वायु का एक निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है और इससे बादर वायु का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। अब बादर वायु कायिक के बाद बादर तेजस कायिक का नंबर है। देखो जैसे हमने पहला एकदम कॉलम किया था, 1 से 5 नंबर जिसको दिए थे, उसी ऑर्डर से फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22 3-3 का ग्रुप लिया। पहले निगोद को, फिर वायु कायिक को, फिर तेजस कायिक को, फिर जल कायिक को, फिर पृथ्वी कायिक को। अब जो नंबर हमने 6 से 11 डाले थे वही ऑर्डर अभी शुरू हो गई बादर के बारे में, उन्हीं जीवों की बात है। वहाँ तो जघन्य की अपर्याप्तों की जघन्य अवगाहना देखी थी हमने 6 से 11 नंबर तक। अभी बादर जीवों के यहाँ पर्याप्त की जघन्य अवगाहना कहेंगे, फिर बादर के अपर्याप्तों की उत्कृष्ट कहेंगे और बादर के पर्याप्त की उत्कृष्ट कहेंगे। अभी ऑर्डर वैसा ही 6 से 11 में जो था, तो 6 से 11 में पहला नंबर वायु का एक का था, फिर तेजो का एक का, फिर जल का एक का, फिर पृथ्वी का एक का, और बाद में निगोद का, और उसके पश्चात वो प्रत्येक का ना प्रतिष्ठित प्रत्येक का लिया था, वही ऑर्डर भी यहाँ चलेगी। तो अभी हमने बादर वायु का एक 3 पढ़े ना, 34 तक सबके नंबरिंग हो गए। अभी 35 नंबर से 35 इससे बादर तेजस का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। इससे 36 नंबर पर बादर तेजस का एक निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना उत्कृष्ट हुआ है, उत्कृष्ट करना उसको, वो अंदर लाइन रहेगी उसके स्ट वाली लाइन, उत्कृष्ट करना उसको, उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। और 37 नंबर पर बादर तेजस का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। अब उसके बाद जल का एक का नंबर 38, 39 और 40 में, इससे बादर अप का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। इससे बादर अप का एक निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। और इससे 40 नंबर पर बादर अप का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। अब जल का एक हो गए, उसके बाद 41, 42 और 43 अब का एक के बाद जल का एक के बाद पृथ्वी का एक लेना है। तो बादर पृथ्वी का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। 42 नंबर पर बादर पृथ्वी का एक निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। और 43 नंबर पर बादर पृथ्वी का एक निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। 41, 42 और 43 का ग्रुप हमने बना दिया। अब 97 पेज पर हम आ गए। अब इसके बाद निगोद का नंबर होगा। देखो हमने वायु का एक से शुरू किया, पहले वायु का एक लिया, फिर तेजो का एक, फिर जल का एक, फिर पृथ्वी का एक, अब निगोद लेंगे, बादर निगोद पहले लेंगे और वो प्रतिष्ठित प्रत्येक वो तो बाद में ले लेंगे। तो अभी 44 नंबर यहाँ डालना 97 पृष्ठ पर पहले। इससे बादर निगोद निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। देखो ये निगोद भी ये सब पृथ्वी कायिकों के पर्याप्तों के उत्कृष्ट अवगाहना से भी बड़े अवगाहना में, यानी निगोद हमेशा छोटा होगा, हमेशा वो छोटी आयु वाला है, ऐसी बात नहीं है। यथा योग्य जो जो है उसको समझना चाहिए। ख्याल आता है कुछ? हाँ। तो बादर निगोद निवृत्ति पर्याप्त जीव की जगह नहीं हो गया अपना। अभी सेकंड लाइन में इससे 45 नंबर डालना, बादर निगोद निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे 46 नंबर पर बादर निगोद निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। अब यहाँ कहते 47 नंबर डालना है, वो छूट गया है, वो ब्रैकेट में जो डाला है ना वो भी पढ़ना चाहिए। तो ये बादर निगोद की बात है ना, 44, 45 और 46 बादर निगोद की बात है। अब हमने 11 नंबर पर किसको देखा था, याद है? हाँ, प्रतिष्ठित प्रत्येक को लिए थे, अभी यहाँ लेना उनको, तो उसके भी तीन हो गए। तो 46 नंबर पर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीव के, निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त कहते हैं तो प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति समझना। ये निगोद उसमें नाम आया इसलिए हम कंफ्यूज नहीं करना निगोद के साथ। निगोद के जो तीन आलाप है वो तो पहले उन्होंने बताए 44, 45 और 46 नंबर पर। इंदुवेद 97 पेज पर तीसरी लाइन जो ब्रैकेट है वहाँ पर आए हम। हाँ, ब्रैकेट में 47 नंबर डालना। इससे निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। यानी प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव की बात चल रही है, प्रतिष्ठित प्रत्येक उसकी जघन्य अवगाहना। इससे 48 नंबर पर निगोद प्रतिष्ठित निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। और इससे 49 नंबर पर 49 निगोद प्रतिष्ठित निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ये तो वहाँ शायद छूट गया था, मगर ये नहीं नहीं ऊपर भी उन्होंने ब्रैकेट में ही लिए है, मूल इसमें ही लिए उन्होंने, मूल ग्रंथ में ही है। देखो नीचे लिखा है, फुट नोट देखना। प्रतिशु प्रति यानी जिस प्रति से ये चल रहा था, कोष्टकांतर्गत पाठो नास्ती, इस प्रति में तो वो ये पाठ नहीं था। वेदना खंडादत्र योजित, वेदना खंडात यानी वेदना खंड से, अत्र योजित वहाँ से ले लिया है। और हमें ये भी मालूम है क्योंकि हमने गोमठ सार में भी जीवकांड में ये पढ़ा था, वहाँ भी जो 64 भेद दिए उसमें भी इनका नंबर बीच में, वो जो हमने 6 से 11 नंबर जिस ऑर्डर से ली थी उसी ऑर्डर से ये बात चल रही है अपनी। तो इसलिए वहाँ ब्रैकेट में डालकर धवलाकार ने, वीरसेन आचार्य ने इसको लिखा है, तो उस ट्रांसलेशन में भी लिया उसको। अब इससे 50 नंबर पर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक, अभी बादरों का नंबर शुरू हुआ, अभी तक हमने वो प्रतिष्ठित प्रत्येक की बात है, अब अप्रतिष्ठित प्रत्येक बादर की बात चलेगी। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है, परंतु उसमें अन्य भी, हाँ वो द्विंद्रियादिक का भी नंबर अभी लगेगा। पहले द्विंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य हमने देखी थी कहाँ, 12 से 16 तक जो ऑर्डर है वो अभी चलेगी। तो जो 12 नंबर पर था हमारा वो यहाँ 50 नंबर पर लिया, यानी उसमें भी 50, 51, 52 नहीं 50 एक ही होगा। ये जो जघन्य उत्कृष्ट वगैरह थी ना वो तो बात हो गई, भी उसमें खाली पर्याप्त अपर्याप्त ऐसी बातें हैं, क्योंकि उसमें सूक्ष्म और बादर भेद थे। अब ये द्विंद्रियादिक में ऐसा भेद नहीं है, द्विंद्रियादिक की अपर्याप्त की देखी हमने, हाँ अभी पर्याप्त की जघन्य होगी।
तो ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक है,
ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। 50 नंबर पर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर निवृत्ति पर्याप्त जीव की, यानी प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। इससे 51 नंबर पर द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। पर्याप्तों की जघन्य अवगाहना, यही से हम ये सारे अवगाहना के भेद बताना शुरू किया था उन्होंने, मूल प्रश्न आपको शायद याद होगा तो। हाँ, तो ये द्विंद्रिय पर्याप्त वगैरह ऐसी बातें वहाँ निकली थी। देखो 94 पेज पर शंका जो है ना, नीचे वाली शंका फिर पढ़ते हम उसको। वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना से द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? ये प्रमाण पूछा तो पूरे 64 भेद बता दिए प्रमाण के लिए। ख्याल है ना कहाँ से अपना शुरू हुआ था विषय? तो यहाँ पर वो बात आई 50 और 51 में। 50 पर है वो वनस्पति कायिक है, उसकी जघन्य अवगाहना है, और 51 नंबर पर द्विंद्रिय की जो पर्याप्त जीव है उनकी जघन्य अवगाहना है, वो असंख्यात गुणी है। 52 नंबर पर तीन द्रिय निवृत्ति नित्य पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी है। अभी 51 और 52 में क्या डिफरेंस है? वहाँ द्विंद्रिय और यहाँ तीन्द्रिय, और कुछ फर्क है? हाँ, अब तक तो हम असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी बहुत बार कहे आए, अब इसके आगे असंख्यात गुणी नहीं कहेंगे। अब यहाँ से आगे सभी संख्यात गुणा हो गए 64वें भेद तक, ख्याल है? अभी तक जो असंख्यात गुणा कहा, सूक्ष्म से अन्य सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म निगोद से सूक्ष्म वायु का ही असंख्यात गुणा, सूक्ष्म से बादर असंख्यात गुणा, उसमें हमने दो टाइप देखे। सूक्ष्म से सूक्ष्म कितने गुणा है? तो अवलिक का असंख्यात भाग, और जब सूक्ष्म से बादर की ओर जाएंगे तो पल्ले का असंख्यात भाग, बादर से बादर भी पल्ले का असंख्यात भाग। अभी वो कितने बार आता है क्या है, वो तो पहले हमने बहुत लंबी चौड़ी उसकी लिस्ट बनाई थी, अब तो इतना ही समझेंगे। तो अभी इसके आगे यानी 51 तक तो गुणित प्रमाण में अभी देखें, और बीच में वो तीन तीन के ग्रुप वो कुछ अधिक देखे थे, बाकी तो अदरवाइज हमने असंख्यात गुणा अब तक देखा है। अब इसके आगे 52 से आगे हम संख्यात गुणा का यहाँ चले गए कथन। देखो 52 नंबर डाला तीन्द्रिय की, अब 53 नंबर पर इससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी है। 54 नंबर पर इससे पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी है। इससे 55 नंबर पर तीन्द्रिय निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है। देखो 50, 51, 52 वो तो पहली ऑर्डर ली थी, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्तों की जघन्य अवगाहना के लिए, उत्कृष्ट अवगाहना के लिए क्रम अलग है। हमने आपको याद होगा भ्रमर का निकाला था, फिर वो गोमी का निकाला था, शंख का निकाला था, ये उत्कृष्ट अवगाहना के भेद अब आएंगे। अभी तो पहले अपर्याप्त की उत्कृष्ट बता रहे हैं, फिर पर्याप्तों की उत्कृष्ट में वो जो हमने निकाले थे ना उसका वर्णन आएगा। अभी अपर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना चल रही है, उसमें भी पहले तीन्द्रिय का नंबर लिया है, तो 55 नंबर पर तीन्द्रिय निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है। 56 नंबर पर इससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है। इससे 57 नंबर पर द्विंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है, और 58 नंबर पर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है। अब यहाँ कहीं पर असंख्यात गुणी नहीं है, वो सब संख्यात गुणा ही चलेगा। हाँ, अपर्याप्त अवस्था चल रही, पर्याप्तों की नहीं, अपर्याप्तों की चल रही। देखो यहाँ किसको लिया पहला, 55 नंबर पर तीन्द्रिय को, फिर चतुरिंद्रिय को, फिर द्विंद्रिय को, फिर वो बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर को लिया, और अभी पंचेंद्रिय को ले रहे 59 नंबर पर 59 पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है। अब अंतिम कॉलम चलेगा यहाँ, फिर पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना बताएंगे जो हमने पहले निकाली थी। इससे तीन्द्रिय निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है। ये इसमें किसको लिया था तीन्द्रिय की? हाँ, गोमी को लिया था, तीन्द्रिय में लिया था। भ्रमर को तो चतुरिंद्रिय में लिया था हमने। देखो इससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है। ये हमने वो कितने घन योजन उसका हिसाब लगाया था पहले, इससे 62 नंबर पर, हाँ अभी 62 नंबर आया, द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है, जो हमने शंख की निकाली थी। अब इससे वो ईसे हुआ है, उसे इससे करो, इससे बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर निवृत्त पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाना संख्यात गुणी है, यानी वो द्विंद्रियों की इतने हमने योजन निकाली थी उससे भी ये प्रत्येक वनस्पति जो पर्याप्त जीव है। हाँ, वो कमल सबसे बड़ा एक इंद्रिय में उसकी उत्कृष्ट अवगाना देखी थी हमने, वो संख्यात गुणी है। और सबसे बड़ी अवगाना अभी 64 नंबर पर, इससे पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणी है। ऐसे कोई है आपके पहचान वाले? महामत्स्य। और मनुष्यों में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? हाँ बोलो भाई। उत्तम भोग भूमि वाले कितनी है? 2000 नहीं, 3 कोस उत्तम भोग भूमि की। हाँ, 6000 धनुष। अभी उसके हिसाब से उनके जो कोई विषकंब वगैरह होगा वो यथा योग्य। हाँ देखो, अब ये तो अपने अवगाहना के 64 नंबर हो गए। एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव की अवगाहना का गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग है, ये पहले ही हमने बताया था क्योंकि वो कन्फ्यूजन नहीं हुए इसलिए। सूक्ष्म जीव से बादर जीव की अवगाहना का गुणकार पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है, यानी जो हमने 1 से 5 तक देखे नंबर, 1 से 2, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा आवली के असंख्यातवे भाग गुणा, पांचवे से छठा जो है बादर का नंबर आया अभी वो पल्ले का असंख्यातवा भाग गुणा। तो सूक्ष्म जीव से बादर जीव की अवगाहना का गुणकार पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है, और बादर जीव से सूक्ष्म जीव की अवगाहना का गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग है। जब बादर का कोठा कंप्लीट होगा और फिर सूक्ष्म की ओर जाएंगे, फिर आवली का असंख्यातवा का गुणकार आएगा, और बादर जीव से अन्य बादर जीव की अवगाहना का गुणकार पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है, यानी जैसे छठे नंबर पर बादर है, सातवें भी नंबर पर, ग्यारहवें नंबर तक बादर 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 है, तो उनका आपस में गुणकार पल्ले का असंख्यातवा भाग है। और फिर आगे भी जो हमने देखा ना 11 के बाद 12 से लेकर फिर 17 तक 16 तक वो भी पल्ले का असंख्यातवा भाग गुणा। बादर से बादर की अवगाहना का गुणकार संख्यात समय है, अर्थात बादर पर्याप्त द्विंद्रिय जीव की जघन्य अवगाहना से बादर पर्याप्त तीन्द्रिय आदि जीवों की अवगाहना का गुणकार संख्यात समय है। ये अर्थात करके उन्होंने बादर द्विंद्रिय पर्याप्त की कितनी कही उन्होंने? जघन्य अवगाहना। हाँ, जघन्य अवगाहना। ये पहले आई थी। हाँ, नहीं, संख्या संख्या बताने ना अपने को, गुणकार कौन सा है, गुणकार की वैल्यू बता रहे, संख्यात समय। जैसे हम कहते हैं ना आवली, ये भी समयों में गिना है उन्हें, आवली का असंख्यात भाग में जितने समय है उस संख्या से गुणकार करना, ऐसा उसका अर्थ है। निकालना तो हमको क्षेत्र है, परंतु वो गुणकार की वैल्यू काल में बताइए। यहाँ शंका, यहाँ पर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग कही है, सो वह भले ही रही आवे, किंतु प्रतरांगुल के भागहार से घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा होता है, यह कैसे जाना जाता है? ये भी बात 94 पेज पर आई थी, वहीं से ये इसकी शंकाएं चल रही है। देखो 94 पेज पर फिर निकालना। शंका देखो, ऊपर की शंका देखो, है ना, सेंटर वाली शंका, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव की अवगाहना भी घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यदि ऐसा न माना जावे तो इससे द्विंद्रिय पर्याप्त जीवों की अवगाहना असंख्यात गुणी नहीं हो सकती, ये उसका प्रश्न था। तो समाधान किया था कि यह कोई दोष नहीं है कि घनांगुल का भागार प्रतरांगुल के भागार से संख्यात गुणा है, ऐसे वहां कहा था, यानी वो उससे संख्यात गुणा है ऐसी बात है, असंख्यात गुणा है ऐसी बात है, पर्याप्तम की जघन्य अवगाहना की बात चल रही है। अब हम यहाँ आए, देखो तो ये कहते हैं वो भागहार बड़ा है या संख्यात गुणा है ये कैसे जाना, उसका समाधान करते हैं। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और स्वस्थान पदों की अपेक्षा तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग में रहते हैं, इस प्रकार के गुरुदेश से जाना जाता है कि प्रतरांगुल के भागहार से घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा है। भागहार बड़ा होगा तो संख्या कम होगी, ऐसा बताना चाहते हैं। वो फाइनल रिजल्ट तिरियल लोग के संख्यात वे भाग में रहते हैं, हाँ वो संख्यात वे भाग में रहते हैं, उससे उन्होंने वो डिजाइन किया। देखो ये उसका रेफरेंस 93 पेज पर है, 93 नीचे से पांचवी लाइन, या उसके भी ऊपर दो लाइन और चले जाओ, नीचे से छठी लाइन देखो। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त और बादर निगोदित प्रतिष्ठित पर्याप्त, यानी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की बात चल रही है। प्रत्येक शरीर वनस्पति प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों के पर्याप्त जीवन के पदों का इसी प्रकार कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और स्वस्थान पदगत बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। ये जो उन्होंने बात निकाली थी उसका यहाँ वहाँ पहुँच चल रहा है, उसके आगे भी लिखा है। देखो उन्होंने पल्लोकम के असंख्यात वे भाग प्रमाण जगत प्रतरों को प्रतरांगुल से खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे उतना इन राशियों का प्रमाण है, राशियों का प्रमाण, और अवगाहना घनांगुल का असंख्यात भाग प्रमाण है। राशि गुणा अवगाहना वो उसका क्षेत्र निकलता है। अब हम आगे यहाँ ले लेंगे 98 पेज पर आते हैं। तथा उक्त इसी गुरुपदेश से बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर के अवगाहना में जीवों की अधिकता भी जाननी चाहिए। अब शंकाकार पूछता है, 99 पेज पर आए हम, सूत्र में बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीव क्यों नहीं कहे? तो खाली वो प्रत्येक शरीर ऐसा कह दिया तो उसमें निगोद यानी प्रतिष्ठित ऐसा नाम क्यों नहीं डाला? तो उसका समाधान, क्योंकि बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवों का प्रत्येक शरीर पर्याप्त वनस्पति का एक जीवों में अंतर्भाव हो जाता है। जब हम प्रत्येक शरीर वनस्पति का एक कहते हैं तो उसमें प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों का अंतर्भाव होता है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घातगत बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव। अब तेजस का एक की चल रही बारी, पांचों लोकों के असंख्यात वे भाग में रहते हैं, मानातिक समुद्घात और उपपादगत वे ही बादर तेजस का एक जीव चारों लोकों के असंख्यात वे भाग में और मनुष्य लोक के असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अब अगला सूत्र हम कहेंगे, बादर वाऊ का यह पज्जत्ता केवड़ी खेते लोगस्य संख्य यदि भागे। अब तक के जो जीव है लोक के असंख्यातवे भाग में, असंख्यातवे भाग में कहे हैं, अब वायु कायिकों की बात आई तो लोक के संख्यातवे भाग में कहाँ है? क्योंकि हमने देखा था ना पूरे वात वाले उनके वगैरह घनफल निकाला था, वो लोक का संख्यातवा भाग निकाला। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, ये नीचे हम हिंदी में पढ़ेंगे, बादर वायु का एक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के संख्यातवे भाग में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पदगत बादर वायु का एक पर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के संख्यातवे भाग में और तिर्यक लोक तथा मनुष्य लोक इन दोनों लोकों से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। शंका, बादर वायु का एक पर्याप्त राशि लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण है, जब वह मारणांतिक समुद्घात उपपाद पदों को प्राप्त हो तब वह सर्वलोक में क्यों नहीं रहती है? उसका उत्तर, नहीं रहती है क्योंकि राजू प्रतर प्रमाण मुख से और पांच राजू आयाम से स्थित क्षेत्र में ही प्राय करके उन बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति की अपेक्षा ये बादर पर्याप्तों की उत्पत्ति मुख्यतः किसमें होती है? एक राजू गुणा एक राजू और पांच राजू हाइट, ये जो हमने देखा ना मनुष्य लोक से ऊपर पांच राजू तक, ये पहले बात आई थी शतार सहस्रार तक के जो है वहां तक ये पर्याप्त वायु का एक है। अब फिर प्रश्न, अन्य क्षेत्रांतर को जाकर उत्पन्न होने वाले बादर वायु का एक पर्याप्त जीव अत्यंत थोड़े हैं, यह कैसे जाना जाता है? तो यह मुख्यतः से यहीं पर उत्पन्न होते हैं, बाकी जीव कम है, ऐसा क्यों कहा? उसका समाधान 100 पेज पर आए अभी हम। बादर वायु का एक पर्याप्त जीव लोक के संख्यातवे भाग में रहते हैं, इस सूत्र से जाना जाता है कि राजू प्रतर प्रमाण मुख वाले, राजू प्रतर यानी राजू गुणा राजू, त्रसनाली की बात चल रही, और पांच राजू आयाम वाले, आयाम यानी लंबाई, उस क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में जाकर उत्पन्न होने वाले बादर वायु का एक पर्याप्त जीव बहुत कम होते हैं। यदि ऐसा न माना जावे तो इस सूत्र का पृथक आरंभ निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि फिर तो उनका बादर वायु का एक अपर्याप्तों में अंतर्भाव हो जाएगा। यानी पर्याप्तों की मेजोरिटी यहाँ है, जो पांच राजू गुणा एक राजू प्रतर। अब वैकृत समुद्घात वाले की बात कर रहे हैं। वैकृत समुद्घातगत बादर वायु का एक पर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग में रहते हैं, अढ़ाई द्वीप से अधिक क्षेत्र में रहते हैं या कम में, यह जाना नहीं जाता। अब इतना ही उन्होंने कहकर छोड़ दिया उसको। अब अगला सूत्र, वनफदी काय निगोद जीवा बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता केवड़ी खेते सवलोगे। वनस्पति का एक जीव, वनस्पति का एक जीव कौन से क्षेत्र में है? तो पूरे लोक में, क्योंकि वहां निगोद भी है ना, तो उसकी अपेक्षा तो पूरा लोक कहेंगे। फिर उसमें कहते हैं निगोद जीव, पहले टोटल में सामान्य पूरा एक भेद बता दिया, फिर उसके अभी भेद कर करके कथन करेंगे। निगोद जीव वनस्पति का एक बादर जीव, वनस्पति का एक सूक्ष्म जीव, वनस्पति का एक बादर पर्याप्त जीव, वनस्पति का एक बादर अपर्याप्त जीव, वनस्पति का एक सूक्ष्म पर्याप्त जीव, वनस्पति का एक सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, निगोद बादर पर्याप्त जीव, निगोद बादर अपर्याप्त जीव, निगोद सूक्ष्म पर्याप्त जीव और निगोद सूक्ष्म अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं। तो वनस्पति कायकों के कौन से भेद को नहीं लिया? प्रत्येक को अलग नहीं कहा, वनस्पति का एक टोटल लिए उसमें तो प्रत्येक और साधारण सभी आ जाते हैं, परंतु पूरे लोक में ये जो कहते हैं वो निगोद की अपेक्षा कहते हैं। निगोदों को लिया है परंतु प्रत्येक वनस्पति को यहाँ नहीं लिया है। वो वनस्पति कायिक कहने से उसमें अंतर्भूत हो जाए उसकी बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी, तो वो तो किसी विशिष्ट कर्म की अपेक्षा है। वैसे यहाँ वनस्पति कायिक कितने क्षेत्र में रहते हैं? पूरे लोक में, परंतु पूरे लोक में किस अपेक्षा से? वो तो निगोद की अपेक्षा से पूरे लोक में। अब उसका विस्तार कहते हैं, देखो, स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात कौमा देना, वहाँ कषाय समुद्घात के बाद कौमा देना, मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत वनस्पति कायिक और सूक्ष्म वनस्पति का एक जीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सर्वलोक में रहते हैं। ये वनस्पति का एक इन जनरल की बात की। इसी प्रकार निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए, उनके बारे में भी ऐसा ही समझना। स्वस्थान और वेदना समुद्घात बादर वनस्पति का एक और बादर निगोद जीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में अकेले समुद्घात स्वस्थान की अपेक्षा लिया उन्होंने। स्वस्थान और वेदना की बात। तिर्यक लोक से संख्यात गुणे और मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं और मानांतिक समुद्घात और उपपादगत ये सब बादर जीव सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि मानांतिक समुद्घात करके कहीं भी उत्पन्न होंगे, वे निगोद में जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, तो सर्वत्र पूरे लोक में जाएंगे। मानांतिक और उपपाद की अपेक्षा तो वो पूरा लोक है, इसलिए बादर को भी यहाँ लिया, नहीं तो बादर तो किसी के आधार से रहते, तो पूरा लोक क्यों कहा? स्वस्थान में तो पूरा लोक नहीं लिया था, अभी देखो हमने पढ़ा ना, देखो फिर पढ़ते हैं नीचे से पांचवी लाइन। स्वस्थान और वेदना समुद्घातगत बादर वनस्पति कायिक और बादर निगोद जीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में रहते हैं, परंतु इन्हीं जीवों को मारणांतिक की अपेक्षा और उपपाद की अपेक्षा पूरा लोक बता दिया। देखो नीचे से दूसरी लाइन लिखा है ना, मारणांतिक समुदाय और उपपादगत ये सब बादर जीव सर्वलोक में रहते हैं। उक्त बादर जीव पृथ्वियों का ही आश्रय लेकर रहते हैं, इसलिए वे लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। जो जो बादर है उनको पृथ्वियों का आधार है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? समाधान करते हैं, गुरु के उपदेश से जाना जाता है कि बादर वनस्पति का एक जीव पृथ्वियों के ही आश्रय से रहते हैं। अब अगला 26 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। तसकाय, यह हमारी कौन सी मार्गणा चल रही है? षटकाय। काय मार्गणा, तो उसमें पांच थावरों की बात हो गई, अब त्रसकाय कहेंगे। तसकाय पज्जतेषु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव अजोगी केवलित्ती केवड़ी खेत्ते लोगस्य असंख्ये यदि भागे। त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। अब इसका ही विस्तार करके समझाएंगे। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात गत त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। त्रस में कौन कौन से गति के जीव हो गए? चारों गति, मैंने गति पूछा ना। दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तो तिर्यंचों में हम उसको एक इंद्रिय और अन्य ऐसा डिवाइड करें, परंतु बाकी तो सारे पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, नारकीय है, देव है, त्रस में तो सबको ही आ गए। अब कहते हैं मारणांतिक समुद्घातगत और उपपादगत त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीव तीनों लोकों के असंख्यातवे भाग में तथा मनुष्य लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर अपवर्तना जान करके करना चाहिए। सासादनादि शेष गुणस्थानवर्ती त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों का क्षेत्र पंचेंद्रिय जीवों के क्षेत्रों के समान जानना चाहिए। इंद्रिय मार्गणा में हमने देखा था पंचेंद्रियों का क्षेत्र वैसा ही, क्योंकि ये अगले गुणस्थान तो पंचेंद्रियों में ही पाए जाते हैं, इसलिए जो इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रियों का क्षेत्र कहा था वही इनका भी होगा। अब 27 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। सजोगी केवली ओगम, तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा क्षेत्र में, वो त्रस्त जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? नरकों में भी है, देव भी है, और मारणांतिक और उपपात की अपेक्षा वो असंख्यात वन क्षेत्र में कहा उन्होंने। मरण करके वो कहीं जाएंगे, द्विंद्रियादि जीव अन्यत्र उत्पन्न होंगे उनकी अपेक्षा से बताया। सहयोगी केवली का क्षेत्र ओघ निरूपित सहयोगी केवली के क्षेत्र के समान है, यह सूत्र सुगम है। ये तो पहले हमने बहुत डिटेल में जाना है, 28 नंबर का। तसकाये अपज्जत्ता पंचिंदी अपज्जत्तानं भंगो, त्रसकायिक लब्धि अपर्याप्त जीवों का क्षेत्र पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के क्षेत्र के समान है। यह सूत्र भी सुगम है क्योंकि इसका पहले निरूपण किया जा चुका है। इस प्रकार काय मार्गणा समाप्त हुई। अब कौन सी मार्गणा? योग मार्गणा। सूत्र पढ़ते हैं। जोगाणुवादेन पंचमण जोगी पंचवची जोगीसु मिच्छादिट्ठि पहुड़ी जाव सजोगी केवली केवड़ी खेते लोगस्य असंख्ये यदि भागे। पांच मनोयोगी कौन कौन से? हाँ बोलो भाई। हाँ सामान्य, सामान्य को पांचवा आलाप कहा था हमने। अकेला मनोयोगी कहेंगे तो उसमें सभी भेद गर्भित हो जाएंगे। वैसे ही वचन योगियों में भी लेना। कहाँ तक लिए? अयोगी केवली को क्यों छोड़ा? योग नहीं, योग मार्गणा में वो अयोगी है ना। योग सहित वाले तो सहयोगी तक है। देखो योग मार्गणा के अनुवाद से पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात गत पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी मिथ्यादिष्टि जीव सामान्य लोग आदि तीनों लोगों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। फिर शंका, वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त जीवों के मनोयोग और वचन योग कैसे संभव है? उसका उत्तर नहीं, क्योंकि निष्पन्न हुआ है विक्रियात्मक उत्तर शरीर जिनके, ऐसे जीवों के मनोयोग और वचन योगों का परिवर्तन संभव है। जिनका विक्रियात्मक शरीर पूरा हो गया है, अभी बन रही है उसकी बात नहीं है, तो बाद में वो पलटना होता है योगों का, वो वहाँ हो सकता है। अब कहते हैं मारणांतिक समुद्घातगत पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में, मनुष्य लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अकेले मारणांतिक क्यों लिया? उपपाद को क्यों छोड़ा? हाँ हाँ ये पर्याप्त है। ये जो मन तो उपपाद यानी जन्मने का वो उत्पत्ति का पहला समय, तो वहाँ तब मनोयोग और वचन योग होता है क्या? नहीं होता। कौन सा योग होता है? आप पहले अच्छा बोला था सर, कारमान भी होता है मिश्र भी होता है। जो रुजु गति से जाएगा उसका उत्पत्ति के पहले समय में मिश्र काय योग होगा, और जो मोड़ वाले गति से जाएगा वो उत्पत्ति के पहले समय में कारमान काय योग होगा। अभी मोड़ वाले गति से जा रहा है ना, उत्पत्ति वही है ना, वो आयु का पहला समय, आयु का पहला समय उसके विग्रह गति में ही हो रहा है। देखो ये हाँ शंका फिर आगे वाली, मानांतिक समुद्घात को प्राप्त असंख्यात योजन आयाम से स्थित और मूर्छित हुए संगी जीवों के मनोयोग और वचन योग कैसे संभव है? इसको क्या पढ़ी है? जो कोमा में है और जो मारणांतिक समुदाहत करते हैं कोमा की अवस्था में, उनको मनोयोग और वचन योग कैसे होगा? उसको कहते नहीं, क्योंकि बाधक कारण के अभाव होने से निर्भर यानी भरपूर सोते हुए जीवों के समान, क्या कहते हैं, कोई जीव एकदम गाढ़ निद्रा में सोते ना, बाधक कारणों का अभाव है वहाँ, तो गाढ़ सोते हुए जीवों के समान अव्यक्त मनोयोग और वचन योग मानांतिक समुद्घातगत मूर्छित अवस्था, इसे लिखा है ही अवस्था में भी चाहिए, अवस्था में भी संभव है। क्या लिखा है वहाँ? तो ही बराबर है। अगर ही लिखेंगे तो मूर्छित अवस्था में ही संभव है, यानी जागृत अवस्था में संभव नहीं है, ऐसा तो होगा। तो भी लिखना चाहिए, भी यानी मूर्छित अवस्था में भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी वहाँ ले रहे हैं। अगर ही लगाएंगे तो हम तुमको नहीं होगा उनके बाधक कारण या भी जो कोई प्रतिपक्षी कर्म है उसका लेना। इसमें कोई विरोध नहीं है, ये सोने के लिए वो बाधक कारण का अभाव बताया उन्होंने, निद्रा का उदाहरण दिया है दृष्टांत। जैसे निद्रा में भी मनोयोग और वचन योग है, ऐसे मन के द्वारा और वचन के द्वारा कार्य करता हुआ नहीं दिख रहा है, फिर भी वहाँ तो कुछ चल रहा है ना, उसका केवलीगम्य है ये योग कौन सा है क्या है, ये हमें थोड़ा ही पता चलता है सामने वाले जीव का कौन सा योग चल रहा है। देखो अब आगे, मनोयोगी और वचन योगी जीवों में उपपाद पद नहीं होता, ये लिखा है स्पष्ट शब्दों में। ये क्यों नहीं होता उसकी बात अभी हमने की, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में वचन योग मनोयोग नहीं होता है। सासाधन सम्य दृष्टि गुणस्थान से लेकर समुद्घात रहित सहयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती मनोयोगी और वचन योगी जीवों का क्षेत्र मूलोग क्षेत्र के समान है। विशेष बात यह है कि सासाधन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि मनोयोगी और वचन योगी जीवों के उपपाद पद नहीं होता। मानातिक समुदाय तो होगा परंतु उपपाद पद नहीं होगा, क्योंकि मनोयोगी और वचन योगी में होता ही नहीं है, भले वो मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो। तो सासाधन और सम्य दृष्टि के भी मानांतिक और ये उपपाद पाया जाता है, उपपाद उसकी बात यहाँ बताए। अब 30 नंबर का सूत्र क्या, विशेष बात यह है कि देखो पहले मिथ्या दृष्टियों में सभी बातें बता दी, बात किसकी चल रही है, मनोयोगी और वचन योगियों की। तो मिथ्या दृष्टियों में भी बताए कि उपपाद वाला पद नहीं होता, अब यहाँ बात गुणस्थान वालों की चल रही है, तो गुणस्थान वालों में भी उन्होंने कहा ना, जैसे ओग का जो क्षेत्र है वैसे यहाँ भी समझना। और विशेष बात क्या है, दूसरे में और चौथे में उपपाद तो है परंतु उपपाद में मनोयोगी और वचन योगी वाले नहीं होंगे, या उल्टा कहेंगे मनोयोगी और वचन योगियों के दूसरे और चौथे गुणस्थान वालों के उपपाद पद नहीं होगा। जैसे हम सासाधन में कहते ना, नारकी सासाधन है, उसमें उपपाद पद नहीं होगा क्योंकि वहाँ उत्पन्न नहीं होते। मानातिक समुदाय तो होगा क्योंकि दूसरे और चौथे गुणस्थान वाले जब मरण के समय में, उनको मनोयोग वचन योग तो हो सकता है, यानी वहाँ मानांतिक समुद्घात तो हो सकता है दूसरे में चौथे में मनोयोग अवस्था में, परंतु उपपाद कब कहते हम, कहीं से आकर उस गुणस्थान में जन्मने वाले जीवों की बात है, उस अवस्था में उस गुणस्थान में जन्मने वालों की बात है, तो वहाँ मनोयोग और वचन योग होता ही नहीं है। यहाँ योग की अपेक्षा बात चल रही है, बोलो। उपपाद भले विग्रह गति से जाए या सीधी गति से जाओ, किसी भी आयु का जो पहला समय है वो उसको उपपाद कहते हैं, उत्पत्ति का पहला समय। तो वो किसी का विग्रह गति में हो और किसी का वहाँ बिना विग्रह के जाता है सीधी गति से, तो उसका वो मिश्र का योग भी शुरू हो गया वहाँ। हाँ, मनोयोग में होता ही नहीं है फिर वो तो बात उन्होंने पहले ही मिथ्या दृष्टि की बात हो गई। अब फिर गुणस्थानों की बात है, जनरल कहा था उन्होंने, यहाँ दोबारा बात कहने की जरूरत नहीं थी, फिर भी यहाँ गुणस्थानों की बात आई तो फिर उन्होंने दोहराया उसको, क्योंकि तीसरे गुणस्थानों में तो कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है, ना मारणांतिक है ना उपपाद का है। पांचवे आदि में तो उपपाद वाला पद होता ही नहीं, मारणांतिक वाला होगा, इसलिए दूसरे और चौथे में सामान्य से उपपाद पद होता है, परंतु यहाँ मनोयोगी वचन योगी की अपेक्षा से उपपाद पद नहीं होगा, ये बात है। अब 30 नंबर का सूत्र, काय योगी सु मिच्छा इट्ठी ओगम, ये मनोयोगी वचन योगियों की बात हो गई, अब काय योगियों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ अपना क्राइटेरिया काय योग का है, काय योगी, अब उसमें मिथ्या दृष्टि जीव, देखो काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान सर्वलोक है। अभी काय योग में वो सभी लेना, निबोध आदि सब लोग, सब जीव है ना उसमें काय योग वाले, एक केंद्रीय तो सभी काय योग वाले ही है, द्विंद्रिय से काय योग और वचन योग शुरू होता है, और मनोयोग तो संगी पंचेंद्रियों के होगा उनके साथ साथ अन्य दो योगों के साथ। अब कहते स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत काय योगी मिथ्यादृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं। अकेले काय योग यही क्राइटेरिया है, क्योंकि अपनी योग मार्गणा चल रही है, पहले के जो हमने इंद्रियों की अपेक्षा काय की अपेक्षा जो भेद किए थे उसको भी भूल जाओ, यहाँ योग की अपेक्षा भेद चल रहे हैं। विहारवत स्वस्थान और वैक्रिक समुद्घातगत काय योगी मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में, देखो अकेले काय योगी कहे तो पूरे लोक में कहे, विहारवत कहेंगे तो अभी उसमें त्रस को ही लेना है, तो वो है असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुण क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर अपवर्तना जान करके करनी चाहिए, यानी कौन से लोग के कितने भाग में है क्या है वो भागार देके समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब 31 नंबर का सूत्र, ये तो मिथ्या दृष्टियों की बात हो गई। अब कहते हैं शासन सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव क्षीण कसाय विदराग छदुमत्था केवड़ी खेतते लोगस्त असंख्य जदि भागे। सासादन समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वितराग छद्मस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती काय योगी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। योग का अभाव होने से इस सूत्र में अयोगी केवलियों का ग्रहण नहीं किया गया है, शेष सूत्र का अर्थ सुगम है। यानी जो हमने गुणस्थानों की बात की थी वही काय योगी वाले गुणस्थानों की भी बात होगी। अब 104 पृष्ठ पर आए हैं, 32 नंबर का सूत्र, सजोगी केवली ओगम, काय योग वाले सयोगी केवली का क्षेत्र ओग सयोगी केवली के क्षेत्र के समान है, तो कितना होगा? अरविंद भाई आप क्या कहते हैं? हाँ, पूरा लोक, पूरा लोक। अभी हम ये काय लोक के अगर भेद करेंगे, काय योग के अगर हम भेद करेंगे, काय योग के साथ भेद है ना, अब उसमें अगर भेद करेंगे हाँ, तो वहाँ पर अलग अलग होगा, तो वो पूरा लोक किसके लिए कहेंगे हम? उसमें योग कौन सा होगा? कारमान का योग होगा, कारमान का योग, यही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, और मिश्र में कौन? हाँ, और हाँ, दंड में औदारिक है, औदारिक का योग है, और मिश्र में औदारिक मिश्र है कपाट में, और प्रतर लोक पूर्ण और फिर प्रतर, तीन समय तक कारमान का योग है, वो बातें आगे आएगी। यहाँ क्राय योग में सभी होगा, यानी लोक का असंख्यात्व भाग भी होगा, बहुभाग भी होगा और पूरा लोक भी होगा। ये जो मूल योग में जो कथन करके आए हैं वही यहाँ होगा। इसीलिए लिखा ओग सहयोगी केवली के क्षेत्र के समान है, क्योंकि अभी सामान्य से काय योग सब पूरा ही लिया है, उसमें सभी काय योग वाले आते हैं। जब उसके डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग कथन होगा। शंका, सासाधनादि गुणस्थान प्रतिपन्न सभी जीवों का एक योग क्यों नहीं किया? अर्थात पूर्वोक्त सासाधन सम्मिट्टि पौड़ी इत्यादि सूत्र का और इस सहयोगी केवल योगम सूत्र का एक समास क्यों नहीं किया? एक योग क्यों नहीं किया? इन्हें क्या कौन सा योग कहना चाहते थे? काय योग के क्या वचन योग? हाँ भाई, कौन से योग की बात है? एक योग कहीं क्यों नहीं किया, उनको इकट्ठा क्यों नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ये प्रश्नकार का क्या पूछना है? देखो, हमने दो अलग अलग सूत्र पढ़े अभी, 31 और 32। 31 में सासाधन से लेकर 12वें गुणस्थान तक की बात की और 32वें में सहयोग केवली की बात की। हा? तो ऐसा कहते हैं कि दोनों को मिलाकर ओघ के समान ऐसा क्यों नहीं कहा, ये बात बताएं। इसीलिए अलग किया उसका समाधान, क्योंकि सहयोगी केवली के क्षेत्र में सहयोगी केवली लोक के असंख्यात बहुभागों में और सर्वलोक में रहते हैं, इस प्रकार का विशेष कथन पाया जाता है। यानी उसमें तीन कथन आते हैं, ये जो समुद्घात नहीं करते उनकी अपेक्षा से लोक के असंख्यात विभाग में, प्रतर समुद्घात में लोक के असंख्यात बहुभाग में और लोक पूरण की अपेक्षा पूरे लोक में। इसलिए उक्त दोनों सूत्रों का एक योग नहीं किया, ये समझना, एक योग यानी टोटल एक ग्रुप नहीं बनाया, उसको इकट्ठा नहीं किया उसको। ये योग मार्गना वाला योग नहीं है, ये एक जोड़, उनको एक साथ नहीं क्यों किया, उसका ग्रुप क्यों नहीं बनाया? अब अगला सूत्र, ओरालिय काय योगीसु मिच्छाइट्ठी ओगम, औदारिक काय योगियों में मिथ्यादृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान सर्वलोक है। स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात गत ये औदारिक काय योगी मिथ्यादृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रीय जीव सर्वलोकवर्ती क्षेत्रों में संभव है। हमने देखा था सूक्ष्म जीव पूरे लोक में रहते हैं, किंतु उक्त जीवों के उपपाद पद नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ नहीं पढ़ना, अपने मन से सोचना। मयंक भाई आप कह सकते हो? मेरा प्रश्न ऐसा है, उक्त जीवों के उपपाद पद नहीं होता। उपपाद अभी मैंने चर्चा की थी ना, उपपाद अवस्था है तब कौन सा काय योग है? या तो मिश्र होगा या तो कारमान काय होगा, और हमारी बात अभी औदारिक काय योग संबंधी चल रही है। अभी यही चर्चा की थी, इसलिए मैंने पहले ही चर्चा की इसके। देखो, किंतु उक्त जीवों के उपपाद पद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर औदारिक काय योग से निरुद्ध जीवों का क्षेत्र बताया जा रहा है। निरुद्ध ने क्या युक्त निरुद्ध का अर्थ उससे सहित जीव। औदारिक कायोग से निरुद्ध यानी औदारिक कायोग से युक्त जीव, जिनको औदारिक कायोग है ऐसे जीव लिए यहाँ। विहारवत स्वस्थान वाले औदारिक कायोगी जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात विभाग में और तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग में रहते हैं, क्योंकि समस्त त्रस पर्याप्त राशि के, वो पर्याय राशि का पर्याप्त राशि करना, समस्त त्रस पर्याप्त राशि के संख्यात्वे भाग का ही संचार यानी विहार होता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। यानी सभी त्रस राशियों में से उसका संख्यात्वा भाग ही विहार करते हैं, ऐसा यहाँ उपदेश है। उक्त औदारिक कायोगी मिथ्यादृष्टि जीव अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यह ऐसा क्यों कहा? पूरे असंख्यात द्वीपों में और स्वयं ब्रह्मण समुद्र में वगैरह है। अब वैक्रेक समुद्घातगत औदारिक कायोगी मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि औदारिक कायोग से निरुद्ध होने पर यानी युक्त होने पर क्षेत्र का वर्णन करते समय वैक्रेक कायोगी जीवों के होने वाला वैक्रेक समुद्घात असंभव है। क्या कहते हैं? यहाँ हमारी बात किसकी चल रही है? औदारिक कायोगी वालों की जीव बात चल रही है। तो औदारिक कायोग होते हुए भी वैक्रिक समुद्धात होता है जीवों का, परंतु यहाँ वो वैक्रिक कायोग वाले वैक्रिक समुद्धात करते उनकी बात नहीं है। जब उनकी बात होगी तो वो क्षेत्र का प्रमाण अलग होगा। यहाँ पर औदारिक कायोग वाले यानी मनुष्य तिरियंचों की पर्याप्तों की बात है, तो उनकी अपेक्षा एक क्षेत्र का वर्णन चल रहा है, ये बात यहाँ बताना चाहते। विशेषार्थ इसी का करते हैं। फिर दोबारा 105 नंबर पर इस उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि अभी यहाँ पर वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त औदारिक कायोगी जीवों का क्षेत्र तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग बताया है, तब शंका की जा सकती है कि वैक्रियक शरीर वाले जीवों के वैक्रियक समुद्घात का क्षेत्र तो तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग बतलाया है और यहाँ पर असंख्यात्वा भाग बतलाया है, फिर यहाँ उसका क्षेत्र तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग क्यों कहा? इस आशंका का समाधान करते हुए धवलाकार कहते हैं, यहाँ पर औदारिक कायोग का प्रकरण है, अतएव औदारिक शरीर वाले मनुष्य और तिर्यंचों के जो वैक्रिक समुद्घात होता है उसका क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही हो सकता है, अधिक नहीं। बहुत जीव नहीं करते ना औदारिक कायोग वाले वैक्रिक समुद्घात, बहुत नहीं करते हैं। हाँ, वैक्रिक शरीर वाले देवादिकों के जो वैक्रिक समुद्घात होता है उसका क्षेत्र अवश्य तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, किंतु उसका यहाँ प्रकरण नहीं है। उनको तो वैक्रिक कायोग में हम बताएंगे, ऐसा कहते हैं। यहाँ औदारिक कायोग वाले की बात चली, क्योंकि औदारिक कायोग के साथ वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र कहते समय वैक्रिक काय योगी सहगत वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र कहना असंभव है। दो योग एक एट अ टाइम नहीं होते हैं, और जो मनुष्य और तिर्यंच है उनको वैक्रिक काय योग होगा ही नहीं। वैक्रिक समुद्घात तो हो सकता है, वैक्रिक काय योग नहीं होगा। यानी उनके जब वैक्रिक समुद्घात होता है तो उनका औदारिक काय योग ही चलता है। अब ये मिथ्या दृष्टियों की बात हो गई। अब ये 34 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। शासन सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव सजोगी केवली लोगस्य असंख्य जदि भागे। सासादन समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर सयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती औदारिक का योगी जीव लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। शंका। सयोगी केवली भगवान लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं, इतना ही क्यों कहा? क्योंकि शंका करने पहले सुना था उसके लोक के असंख्यात बहुभाग में रहते हैं, पूरे लोक में भी रहते हैं, परंतु वो भूल गया कि हाँ औदारिक कायोग का प्रकरण चल रहा है। तो औदारिक कायोग तो बिना समुद्घात वाले के होगा और दंड वाले को होगा जो लोक का असंख्यात भाग है। आगे उसका समाधान करते हैं। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि औदारिक कायोग से निरुद्ध क्षेत्र का वर्णन करते समय औदारिक मिश्र का योग और कारमाण योग के साथ में होने वाले कपाट प्रतर और लोकपुरण समुद्घातों का होना संभव नहीं है। औदारिक का योग में वो समुद्घात नहीं होते, जब वो समुद्घात होता है तो औदारिक मिश्र होगा और कारमाण होगा। इसलिए औदारिक का योगी सहयोगी केवली लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं, ऐसा कहा। सासाधन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि, औदारिक का योगी जीवों के उपपाद पद नहीं होता। ये तो मनोयोगी और वचन योगी में होता ही नहीं है, परंतु यहाँ भी क्यों नहीं? क्योंकि उनको तो ये पर्याप्त होने पर ही औदारिक का योग होगा, इसलिए या तो कारमाण होगा या मिश्र होगा। प्रमत्त गुण स्थान में आहारक समुद्घात पद भी नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ इंदुबेन, आप कहेंगे ये औदारिक का योगी वालों को वो आहारक समुद्घात वाला पद क्यों नहीं है? वहां कौन सा योग होगा? आहारक का योग होगा, आहारक मिश्र होगा, ख्याल है? दोनों हो गए, शुरू में आहारक मिश्र फिर आहारक, यानी वहां योग पलट जाएगा और हमारा क्राइटेरिया औदारिक का योग का चल रहा है। तो यानी सामान्य से प्रमत्त वाले अप्रमत्त वाले सबको हम लेंगे, परंतु वो तो आहारक वाले जो है उनको उस योग में बताएंगे, जब उस योग की बात आएगी तब उनकी चर्चा करें, क्योंकि यहाँ पर औदारिक का योगियों का क्षेत्र बताया जा रहा है। शेष गुण स्थानों में यथासंभव पद जानकर कहना चाहिए, यथासंभव यानी जो जो पद वहाँ पॉसिबल है वो जानकर कहना चाहिए, जो हमने गुण स्थानों में पहले देखा ही था। अब 35 नंबर का सूत्र, ओरालिय मिस्स काय योगी सो मिच्छाइट्ठी ओगम। औदारिक मिश्र का योगियों में मिथ्यादृष्टि जीव ओघ के समान सर्वलोक में रहते हैं। शंका, मिथ्यादृष्टियों के बहुत होने पर भी यहाँ सूत्र में एक वचन का निर्देश कैसे किया है? मिथ्यादृष्टि के लिए मिथ्यादृष्टि पूरे लोक में रहते ऐसा लिखा, उसका समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संख्या की अपेक्षा बहुत से भी जीवों के जाति की विवक्षा से एकत्व पाया जाता है। हम कहते हैं ना जाति अपेक्षा, जीव कहाँ रहता है ऐसा हम पूछेंगे, तो जाति अपेक्षा जीव पूरी एक जाति हो गई उसमें, तो हम जीव अनंत है सभी कहेंगे ना। तो यहाँ जाति अपेक्षा एकत्व भी यानी एक वचन भी हम यूज कर सकते हैं, अथवा मिच्छाइट्ठी पद बहुवचन का ही निर्देश समझना चाहिए। मिच्छाइट्ठी कहते तो एक वचन के लिए भी वही पद है और बहुवचन के भी लिए वही है, तो इसको बहुवचन भी समझ लो तो कोई बात नहीं है, ऐसा कहते हैं। निर्देश यानी कथन। शंका, तो फिर यहाँ बहुवचन की विभक्ति क्यों नहीं पाई जाती है? उसका समाधान, आदि मध्य और अंत के वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है, इस प्राकृत व्याकरण के सूत्रानुसार बहुवचन की विभक्ति का लोप हो गया है। ये व्याकरण की बात उन्होंने बता दी, ये प्राकृत का व्याकरण। अब आगे पढ़ेंगे हम, स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पदगत औदारिक मिश्र का योगी मिथ्यादृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं। ये औदारिक मिश्र में मारणांतिक समुद्घात कैसे लिया? बोलो। मारणांतिक समुद्घात है तो वो पहले भव का पूरा योग होगा, मान लेते हैं देव वैकरेक मारणांतिक समुद्घात करके मनुष्य में आया तो उसका वो वैकरेक का योग होगा। हम मारणांतिक की बात कर रहे हैं, नहीं आ रहे। हाँ औदारिक मिश्र का ही, हाँ अपर्याप्तों को लेना है। अपर्याप्त जीवों का कौन सा कायोग चल रहा है? अपर्याप्त है ना, तो मिश्र ही कायोग है, तो उनका मरण कब होगा? मिश्र कायोग अवस्था में होगा, इसलिए वहां पर लिया। ख्याल है, थोड़ा थोड़ा वो स्ट्रेच करना इमेजिनेशन। देखो इसको पढ़ेंगे, सर्वलोक में रहते, यहाँ पर विहार व स्वस्थान और वैकरेक समुद्घात ये दो पद नहीं होते, क्यों नहीं होते? विहार त्रस्क हो तो औदारिक मिश्र भी त्रस्क हो सकता है। विहार गति नाम कर्म का उदय है, हाँ, वो पर्याप्त है, शरीर पर्याप्ति होने के बाद होता है। देखो, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग के साथ इन दोनों पदों का विरोध है, यानी पर्याप्त होने के बाद वैकृत समुद्घात कर सकता है औदारिक कायोग वाले, तो औदारिक मिश्र वाले को नहीं होगा वो शंका। औदारिक मिश्र कायोग का वैकृत समुद्घात आदि पदों के साथ भेद पाया जाता है, अतएव सूत्र में ओघ पद का निर्देश घटित नहीं होता है। वहां जैसा कहते हैं ना ओघ के समान पूरा लोक, तो ये घटित नहीं होता ऐसा कहते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के साथ औदारिक मिश्र कायोग में होने वाले स्वस्थान आदि पदों की प्ररूपणा ओघ प्ररूपणा के तुल्य है, इसलिए ओघपना विरोध को प्राप्त नहीं होता। यानी वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पूरे लोक में, क्योंकि पूरे लोक में ना सूक्ष्म स्थावर सब पूरे लोक में, तो उनके औदारिक मिश्र कायोग भी वहाँ पाया जाता है, तो वो स्वस्थान आदि की अपेक्षा उसमें कोई विरोध नहीं आता है। अब 36 नंबर का सूत्र, शासन सम्माइट्ठी असंजत सम्माइट्ठी सजोगी केवली केवड़ी खेतते लोगस्य असंख्य यदि भागे। ये किसकी बात चल रही है? औदारिक मिश्र की। मिथ्या तो गुणस्थान हो गया, औदारिक मिश्र में और कौन कौन से गुणस्थान है? हाँ, पहले की बात होगी, अभी दूसरा चौथा और सहयोगी का, बराबर। और कोई रह गया छठवा? आहार, औदारिक मिश्र नहीं हुआ पक्का, मंजबे इनको अभी पक्का नहीं है। हा? देखो, वहां तो मुनिराज है छठे गुणस्थान में, औदारिक का योग में है, या मनोवचन का कोई भी योग होगा उसमें से उनको तो आहारक मिश्र और आहारक का योग होगा, औदारिक मिश्र का होने का सवाल ही नहीं है, ख्याल है? अब यहाँ कहते नीचे अर्थ, औदारिक मिश्र का योगी सासाधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि और सहयोगी केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। सहयोगी केवली को भी लोक के असंख्यातवे भाग में कहा, कौन सा वाला है? दंड नहीं, कपाट वाला है। दंड में औदारिक ही कायो गए। इस सूत्र में पूर्व सूत्र से औदारिक मिश्र का योग इस पद की अनुवृत्ति होती है, यानी वो कंटिन्यूटी है उसकी, इसलिए सूत्र के अर्थ का इस प्रकार संबंध होता है। औदारिक मिश्र का योगियों में सासाधन समय दृष्टि असंयत समय दृष्टि और सहयोगी केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घातगत सासाधन समय दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण सासाधन सम्यक दृष्टियों की राशि का पाया जाना संभव है, जो टोटल जो सासाधन वाले हैं उसमें पल्योपम का असंख्यात भाग करना तो औदारिक मिश्र का योग हो गया। यहाँ पर शेष विहारवत स्वस्थान आदि पद नहीं होते, ये पहले देखा ना, विहारवत कब होगा? पर्याप्त होने पर, क्योंकि सासाधन गुणस्थान के साथ उन पदों का यहाँ पर विरोध है। यहाँ पर यानी औदारिक मिश्र काय योग में विरोध है, सासाधन के साथ विरोध नहीं है, मिश्र अवस्था में विहारवत स्वस्थान का विरोध है। स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घातगत औदारिक मिश्र कायोगी असंयत समय दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग में और मनुष्य क्षेत्र में संख्यातवे भाग में रहते हैं, क्योंकि वे संख्यात राशि प्रमाण होते हैं। क्षेत्र के पहिए ना, खेतस्य क्षेत्र में नहीं रहते, क्षेत्र के संख्यातवे भाग में, क्योंकि वो क्षेत्र कितना है उसके संख्यात विभाग में ऊपर है ना, मानुष क्षेत्रस्य संख्यात यदि भागे। हम खाली क्षेत्र से कंपेयर कर रहे हैं, हाँ मनुष्य क्षेत्र में भी कह देंगे, मनुष्य क्षेत्र के लिखना अच्छा है, क्योंकि औदारिक मिश्र का योगी कहाँ हो गए? चौथे गुणस्थानवर्ती,
तो
मरण के समय नहीं उत्पन्न होने वाले, मरण के समय में उनका औदारिक का योग या मनोवचन का योग होगा। यहाँ चौथे के साथ मनुष्य को और तिर्यंच में उत्पन्न होने की बात है। तिर्यंच में भी भोग भूमि वाले भी लगे उसमें। औदारिक मिश्र औदारिक मिश्र को लेना है हमको। इसलिए मनुष्य क्षेत्र के संख्यात भाग में रहते, क्योंकि वे संख्यात राशि प्रमाण होता है। संख्यात ही है ना, मनुष्य जीव भी संख्यात है। आप कहेंगे तिर्यंच तो असंख्यात है, परंतु तिर्यंचों में जो उत्पन्न होते हैं सम्यक्तों के साथ, हमने देखे या तो क्षायिक या वेदक हो गए, कौन से कृतकृत्य वेदक जो मनुष्य में से वहां उत्पन्न होते, वे भी संख्यात ही होते हैं, ये भी हमने पहले देखा था। तो औदारिक मिश्र में चौथा गुणस्थान संख्यात जीव है, तो इसलिए मनुष्य क्षेत्र के संख्यात विभाग में कहेंगे। शंका, औदारिक मिश्र का योगी सासाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों के उपपाद पद क्यों नहीं कहा, यह हमने पहले डिस्कस किया था। मिश्र का योग है ना, हाँ, तो उसमें दूसरे गुणस्थान वाले को क्यों नहीं कहा है, उपपाद पद क्यों नहीं कहा, ऐसा कहते हैं सासाधन वाले के और असंयत समय दृष्टि के नहीं, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में स्थित सासाधन और असंयत समय दृष्टि जीवों का पुनः औदारिक मिश्र का योगियों में उपपाद नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? देखो इसका अर्थ जरा समझाओ भाई, कौन समझाएगा? इट डजंट मीन दैट। बोलो, देखो यहाँ क्या बात रहे, औदारिक मिश्र काय योगी सासाधन और असंयत समय दृष्टि जीवों के उपपाद पद क्यों नहीं कहा है? ये कौन सी अपेक्षा से बता रहे हैं? जैसे अभी हमने देखा था ना, औदारिक मिश्र अवस्था में मारणांतिक समुद्घात कौन करते हैं, उसकी बात हमने की है कि वो तो हो अपर्याप्त जीव करेंगे, ऐसा बताया था। अब उसकी बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो उपपाद की बात हो रही है। उस अवस्था उपपाद में हो सकती है कि नहीं, तो हमने पहले हो सकती है ऐसा भी देखा था। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, नहीं हो सकती। वो किस अपेक्षा से नहीं हो सकती कहते हैं? तो मिश्र में से मरकर मिश्र में आने वाला ऐसा कौन होगा, अपर्याप्त होगा। तो सासाधन वाला और सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थान वाला जो है ना, वो तो पर्याप्त होने वाले हैं नियम से, अपर्याप्त में वे जन्मते ही नहीं है। वो तो पहले गुणस्थान में उसकी बंदगी और उदय की विच्छित्ति हो जाती है। इसलिए क्या करते, देखो असमाधान करते हैं, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में स्थित सासाधन और असंयत समय दृष्टि जीवों का पुनः औदारिक मिश्र का योगियों में उपपाद नहीं होता, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मरकर अपर्याप्त अवस्था में वो उनका होता ही नहीं, क्योंकि वे तो नियम से पर्याप्त जीवों को ही सासाधन और चौथा गुणस्थान है। वो निवृत्ति अपर्याप्त भले हो, परंतु वो पर्याप्त होने वाले हैं, तो उस अवस्था में मरेंगे नहीं, है ना? और पर्याप्त होकर भी कोई मरेगा तो भी वो अपर्याप्त में जन्मेंगे नहीं। अथवा इसलिए दूसरा भी ऑप्शन बताएं, उपपाद होता है क्योंकि सासाधन और असंयत समय दृष्टि गुणस्थान के साथ अनुक्रम से ग्रहण किए गए नए भव संबंधी शरीर के प्रथम समय में उसका सद्भाव पाया जाता है। ये जो हमने मान लेते देव मरकर आया, सासाधन के साथ मनुष्य तिर्यंच में जन्मा, तो उनके तो ये उपपाद हो जाएगा। उपपाद में पहले समय में सासाधन गुणस्थान हो सकता है, चौथा गुणस्थान हो सकता है, जो रुजुगति से आया औदारिक मिश्र है और उसको चौथा गुणस्थान है, तो ऐसे हो सकता है। पहले तो नहीं हो सकता उसकी अपेक्षा बताई, अब हो सकता है उसकी अपेक्षा बता रहे। दूसरी बात यह है कि स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, केवली समुद्घात और उपपाद, इन पांच अवस्थाओं के अतिरिक्त औदारिक मिश्र कायोगी जीवों का अभाव है, यानी औदारिक मिश्र कायोगियों को कौन कौन सा अभाव है? ये गुणस्थान कौन से चल रहा है? दूसरा और चौथा, इसलिए मारणांतिक नहीं लिया। मारणांतिक समय में क्या औदारिक मिश्र होगा उनको? नहीं होगा, क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था में मरेंगे नहीं, पर्याप्त ही है जी जीव। मिथ्यात्व अवस्था में मारणांतिक को लिया था, ये दूसरे और चौथे की बात चल रही है, दूसरा चौथा और केवली इनका अभी सूत्र चल रहा है। उस अवस्था में इन जीवों को औदारिक मिश्र अवस्था में मरण नहीं है। कुछ कंफ्यूजन है अश्विन भाई आपको? देखो औदारिक मिश्र का योग की बात चल रही है, तो कहीं से मरकर जीव इसमें तो इस गुणस्थान के साथ आता है, मनुष्य त्रियंचो में जन्मता है, तो हम कहेंगे औदारिक मिश्र में उपपात तो है, बराबर। अब ऐसा कोई दूसरा और चौथे गुणस्थान वाला, वो नियम से पर्याप्त है जीव होने वाले, तो उनके अपर्याप्त अवस्था में मरण होता ही नहीं है। पर्याप्त नाम कर्म वाले जीवों का अपर्याप्त अवस्था में कभी भी मरण नहीं होगा, पर्याप्त होकर भले वो अंतर्मुहूर्त में मर जावे, जब तक पर्याप्ति चल रही है तब तक उनका मरण नहीं है, मिश्र अवस्था में उनका मरण नहीं होगा, वो बात यहाँ बताए। इसलिए मारणांतिक समुद्घात नहीं है, औदारिक मिश्र की बात चल रही है। और किस किस को नहीं लिया यहाँ? वैकृत समुद्घात को नहीं लिया है, आहारक को नहीं लिया है, तेजस को नहीं लिया है, हाँ विहारवत नहीं लिया, क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था में वो संभव नहीं है। अब केवली समुद्घात भी लिया, वो केवली की अपेक्षा से लिया, तो क्या केवली में वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात हो गए? क्यों बेन? हाँ कषाय रहित है और वेदना? वेदना से भी रहित है। विशेषा यहाँ पर प्रथम तो औदारिक मिश्र कायोगियों का, औदारिक मिश्र कायोगियों में उपपाद का अभाव बतलाया गया, ये तो बात हमने देखी। गुणस्थानों की बात चल रही है, मिथ्यात्व गुणस्थान में तो औदारिक मिश्र अवस्था में अपर्याप्त जीवों का मरण होगा, और वो औदारिक मिश्र के साथ जन्मेंगे भी अन्य रुजुगति से, वहां तो पॉसिबल था, यहाँ दूसरे चौथे गुणस्थानों की बात चल रही है। अथवा करके उन्होंने उपपाद बतलाया भी, अथवा करके औदारिक मिश्र कायोगियों में उपपाद का सद्भाव भी बतला दिया गया है। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध सी प्रतीत होती है, किंतु यथार्थता उनमें कोई विरोध नहीं है, भेद केवल कथन शैली का है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रथम, जो औदारिक मिश्र कायोगियों का औदारिक मिश्र कायोगियों में उपपाद का अभाव बतलाया है, उसका अभिप्राय यह है कि औदारिक मिश्र का योग तिर्यंच और मनुष्यों की अपर्याप्त दशा में ही होता है, वो योग कब होता है उसकी बात की, और अपर्याप्त दशा को प्राप्त सासाधन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि जीव मरण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो नियम से पर्याप्त होने वाले हैं, जिससे कि वह पुनः औदारिक मिश्र का योगी सासाधन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि तिर्यंच या मनुष्यों में उत्पन्न हो सके। अतएव उसमें सासाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि औदारिक मिश्र कायोगी जीवों के उपपाद का अभाव बतलाना सर्वथा युक्ति संगत ही है। पुनः अथवा करके जो औदारिक मिश्र कायोगियों में उनके उपपाद का सद्भाव बतलाया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि पूर्व भव के शरीर को छोड़कर उत्तर भव के प्रथम समय में प्रवर्तन को उपपाद कहा गया है, वह उपपाद उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही होता है। अतएव यदि कोई पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी और औदारिक कायोगी सासाधन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि जीव मरकर मनुष्य तिर्यंचों में, यहाँ कौमा देना, फिर अर्धविराम देना, पांच मनोयोगी, पांच वनयोगी, वचन योगी तथा अवैक्रिय कायोगी जीव मरकर मनुष्यों में, पहले तो साधारण बात की, मनुष्यों में रुजुगति से उत्पन्न होता है, तो उसकी ऊर्जुगति ये खास लिया क्योंकि औदारिक मिश्र होना चाहिए। विग्रह गति से आता है तो बीच में कारमान का योग हो जाता है। ऋजुगति से उत्पन्न होता है तो उसकी उत्पत्ति के प्रथम समय में औदारिक मिश्र का योग का सद्भाव पाया जाता जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सासादन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि गुणस्थान के साथ ऋजुगति से धारण किए गए आगामी भव संबंधी शरीर के प्रथम समय में औदारिक मिश्र का योगियों के उपपाद का सद्भाव पाया जाता है। दोनों ही स्पष्टीकरण बताए उन्होंने। इस प्रकार यह स्पष्ट है उक्त दोनों कथनों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, भेद केवल कथन शैली व विवक्षा का ही है। बाकी बात हम कल करेंगे। जावाणी